अब इसके बाद तस्वीर का दूसरा रुख है जो बड़ा तलख है। इमेजिन कीजिए, अंधेरी रात है, नीचे एक बहुत बड़ा दरिया है, पतला सा पुल है। अगर आपने पाकिस्तान में नॉर्दर्न इलाकों में सफ़र किया तो ऐसे आपको बहुत सारे ब्रिज मिलेंगे। सवात एक वादी है, उसके अंदर अगर आप बहरैन जाए, पतला सा पुल है और नीचे दरियाए नीलम बह रहा है। अब ज़रा जहन में लगे, अंधेरा भी है, रात भी है, और यहाँ तो दुनिया में पानी का समंदर है ना, वहाँ जहन्नुम हो गया, आग का समंदर, और सबको जाना है। वाइम मिन को मिल्ला वारी दो, सब गुजरोगे, सूरत मरियम में पढ़ चुके हम। अब वहाँ क्या होगा? ईमान वाले तो अपने नूर की रोशनियों में भाग गए। हर एक का नूर मुख्तलिफ होगा, किसी का मदीना से अदन तक होगा, इतनी ब्राइट लाइट होगी उसके लिए, उसकी नेकियाँ जहाँ तक फैली अल्लाह ने उसके ज़रिए खैर दिलवा दी। और किसी का नूर सिर्फ़ उसके नाहुन तक होगा, जैसे वो टॉर्च लाइट नहीं, टिक 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 करके आप उसकी रोशनी में डरते हुए चलते हैं। लेकिन मुनाफिकों के साथ पुलसरात पर क्या होने वाला है? यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू। उस रोज़ मुनाफिक मर्दों और औरतों का हाल ये होगा कि वो मोमिनों से कहेंगे, ज़रा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठाएं। अच्छा, दुनिया में उलट होता है। दुनिया में मोमिन दुनियादारों को कहते हैं, आओ ना कुछ इस नूर से फ़ायदा ले लो, ये कुरान का ही नूर है, ये रमज़ान का नूर है, ये दौरे कुरान का नूर है। तो क्या कहते थे? मसरूफ़ है, ज़रा बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना, शुरू हो जाएंगी फिर आएंगे। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा जॉब से छुट्टी ले लूँ फिर आऊँगी। अच्छा, आखिरी अशरे में आऊँगी। अच्छा, फिर दुआ में बताना, कोई नहीं आता। जिसने शुरू से नहीं पढ़ा, बीच में कोई एक दिन आ गया, कोई दूसरे दिन आ गया, एक दिन आए दूसरे दिन ही आता। लिख लीजिए, दिल ही तब ठुकता है जब आप शुरू से लेकर आखिर की नीयत करें कि मैंने छोड़ना कोई नहीं। और आप जैसे जो देखती हूँ कि पहले से आके बैठे होते हैं, क्योंकि शुरू से आने की आदत पड़ गई। बारिश में भी आते हैं, जिसको आना है वो बारिश में भी आएगा, जिसको नहीं आना उसको धूप में भी नहीं आना। तो दुनिया की कहानी उधर पलट गई, वहाँ वो मुनाफिक जा रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो आगे जा रहा है बहुत बड़ी लाइट लेकर, तो कहेंगे ज़रा ठहर जाओ भाई, ठहरो। जैसे अगली गाड़ी वाले को आप कहते हैं ज़रा रुकिए, हम भी आपकी इस गाड़ी की लाइट में आगे आ जाएं, ज़रा हमारी तरफ देखो ताकि हम तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठाएँ। मगर इनसे कहा जाएगा, यकीन करें, रो पड़े अगर इन आयतों को हम समझ जाएँ, पीछे हट जाओ, गो बैक, इशारा भी जाओ दुनिया में की लर्जे हो, वराकुम, पीछे हो जाओ, हट जाओ मेरे से, दूर हो जाओ, फल तमें सुनोर, वहाँ से जाके नूर लेकर आओ, जो अपना नूर बुक कराओ, यहाँ आके कोई नहीं देता किसी को। इशारा जाओ दुनिया में और नेकियाँ करो, यानी कर नहीं सकते। और अभी ये बातें चल रही हैं, फदूरी बबई नहुम बिसूर लहू बाब, फिर इनके दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी। और ये दुनिया में भी हो जाती है, संजीदगी के साथ अल्लाह की रहनुमाई पर चलने वाले और नफ्स और माशरे के रवाज पे चलने वालों के दरमियान में एक दीवार तो आई जाती है, डेफिनेटली आती है। सोच जहन में भी आती है, प्रैक्टिकली भी आती है। खुशी की बात है ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्तों में चल रहे हैं, कि अब फोकस्ड होके तुम भी ज़रा कुछ काम कर लोगे। दीवार क्या है? बिल्कुल बंद नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी है सारा वक्त बंद। जिसमें एक दरवाज़ा होगा, एक होप है भी। क्या? इस दरवाजे के अंदर रहमत होगी और इसके बाहर अज़ाब। बाज़ उलमा कहते हैं ये आराफ का मुकाम है। वो मोमिनों से पुकार पुकार कर कहेंगे, अलम नकुम माकुम, कि हम तुम्हारे साथ ना थे, तुम्हारे साथ एक घर में नहीं रहते थे, तुम्हारी दोस्त नहीं थी मैं, तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारे बच्चे नहीं थे। इस एक जुमले को देखिए, वहाँ अपनी मोहब्बतों का एहसास दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ तो थे, खाते थे, पीते थे, शादियाँ करते थे, दावतें थी, तुम हमें नहीं पहचान रहे। यानी मोमिन उनको पहचानना ही नहीं चाह रहे, तो वो उनको अपनी अब यादें, वो याद है वो कब मिले थे, वहाँ आए थे, आप उधर थी, मैं उधर थी, फिर आपको तो भूल ही गया होगा। ये स्टाइल है। मोमिनों का जवाब सुनिए, और इस जवाब को यहाँ से नहीं, दिल पे लिखिए। इसके ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा बात हो सकती है। ये आज वेस्ट में रहने वाले मुसलमानों का प्रॉब्लम है, खुल के कहूँगी। अपने मुल्कों में तो शायद या इतना समझ आए। कालू, वो कहेंगे, कौन? मोमिन, ईमान वाले। किन को? दुनियादारों को। भला हाँ, वाकई तुम रहते तुम्हारे साथ ही थे, इसी मुल्क में तुम थे, इसी में हम थे, इसी दुनिया में तुम थे, इसी में हम थे। वला किन्नकुम, लेकिन तुमने, फतन्तुम अन्फुसकुम, अपने आप को खुद फितनों में डाला। लिख लें 1 2 3, फिर बताती हूँ ये फितनों में क्या डालना है। बतरबस तुम, मौका प्रस्ती की, फ़ायदों को देखते रहते थे, मौके देखते थे, कब अच्छा मौका है अल्लाह की बात मानने का। वरतब तुम, तीसरा तुम्हारा गुना, तुम तो शक में ही पड़े रहे, तुम्हारे दिल का शक दूर ही नहीं हुआ अभी तक कि पता नहीं इस्लाम सच है भी कि नहीं, और पता नहीं शायद दूसरे ही ना ठीक हो जाए, ये ना हो जाए। और चौथी चीज़, वगरतकुम, और झूठी तवक्कुआत ने तुमको धोखे में डाल दिया, वगर्रतकुम उल अमानीश, तुम्हें झूठी तवक्कुआत फरेब ही देती रही। कब तक यही सोचते रहे, जरा अभी और कर लो, और कमा लूँ फिर हराम छोड़ता हूँ, ज़रा और जवान हो लूँ फिर तौबा करती हूँ, अच्छा ज़रा और कुछ दुनिया और सिमट जाए ना फिर इस्लाम के लिए भी वक्त लगाती हूँ, फिर जॉब छोड़ दूंगी, बस ज़रा ये पे ऑफ हो जाए वो हो जाए। तुम्हें क्या पता था कि हत्ता जा अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया, आपका इंतकाल हो गया, आप फौत कर दिए गए, या फिर कोई और मामला आपके ऊपर इससे भी संगीन आ गया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुमको धोखे में डाल दिया अल्लाह से अलगरूर ने, ये अलगरूर कौन है? शैतान, वो बड़े धोखेबाज ने तुमको धोखे में डाल दिया। सारी जिंदगी डिली डली, अभी नहीं डिले करती हूँ, अभी सोचती हूँ ये होगा वो होगा, और वो धोखे ही देता रहा। अब देखिए ये है आज के मुसलमानों के मसाइल को समझने वाली आयत। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको फौरी लेना पड़ता है, हेयर और देयर, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो एक मुस्लिम माशरे में रहने वाले लोग, नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, हज ज़कात करने वाले, मजलिसों में दीन के नाम पे शरीक होते थे, लेकिन उनका मसला क्या था? तरबुस। तरबुस अरबी ज़ुबान में इंतज़ार करने को कहते हैं, और मौके की तलाश में ठहरे रहना। जब कोई शख्स किसी रास्ते पे जा रहा हो और आगे दो रास्ते हो, गाड़ी चला रहे हैं आगे यूँ आ रही है रोड, स्प्लिट है, आप सोच रहे हैं किधर जाना था, लेफ्ट या राइट, साउथ और वेस्ट, किधर और किधर, तो जो शख्स वहाँ खड़ा इधर से उधर देखता रहने, कहते हैं ये शख्स तरबुस में मुब्तला है। मुनाफिकीन कुफर और इस्लाम की कशमकश के नाजुक दौर में तरबुस का शिकार होते हैं, ना खुलकर कुफर का साथ दे पाते हैं क्योंकि काफिर बन जाएंगे, और ना पूरे इत्मीनान के साथ अपनी ताकत, अपनी स्किल, अपनी खूबी को, अपने माल को, अपने वक्त को, अपनी औलाद को इस्लाम के रास्ते में लगाते हैं। बस अपनी जगह बैठकर देखते रहते हैं वो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, और इस कुव्वत आजमाई में देखते हैं एंड पे पलड़ा किसका भारी है। इस्लाम कामयाब नज़र हो तो फ़ौरन उठ के इस्लाम की लाइन में खड़े हो जाएंगे, जैसे दो लाइनें बनी हो ना किसी जगह, कभी आपने चेकिंग कराते हुए देखो तो कुछ लोग ताड़ते ही रहते हैं, कौन सी लाइन छोटी वहाँ भाग जाएंगे, चलो दो के बीच में खड़े रहे, जिधर नंबर पहले आगे उधर चले जाएंगे, फिर कहेंगे हम कलमा को, और अगर कुफर को गलबा हो तो हम जाके कहेंगे अलमनाकुम माकुम, हम तुम्हारे साथ थे। ये फितने हैं, वल्लाह ही ये फितने हैं, मैं और आप जिस लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं ये फितनों का दौर है। आज जो हालात हैं और जो औलादों के लिए आगे फ्यूचर की कहानी है, कल मेरे कानों ने जो बात सुनी है मैं इस जगह पे बैठ के नहीं सुना सकती, और मैं सुनाऊंगी अगर जिक्र भी करूंगी तो कम अज़ कम हौसलों में वो लोग जिनके मर्द शहरों में आते जाते हैं उनको पता है कि शहर में कल किस चीज़ पे, परसों किस चीज़ पे प्रोटेस्ट हुआ है। आंखों देखा हाल एक औरत ने मुझे सुनाया जो उनके हस्बैंड ने वहाँ गंदगी देखी है, हकूक लेने के नाम पे, किस चीज़ के हकूक हैं, रोटी कपड़ा मकान, कि होमोसेक्सुअल्स की शादी को लीगली अलाउ करो, भाई कर लो तुम जो कर रहे हो, तुम्हें रोक कौन रहा है? नहीं, जैसे यहाँ की लड़की बाहर से लड़का ले आती है ना शादी के लिए, अब एक लड़की को इजाज़त दीजिए वो अपने मुल्क से एक लड़की को असेंबल करे इधर ताकि उससे शादी कर सकूँ, ये था उनका मुतालबा। आप किस शहर में हुआ है 3 घंटे पूरे ओस्लो में, और किस तरह अल्लाह ताला आंखों को ना दिखाए, नेकेड लड़कियां और जिस्म पे कुछ सिर्फ पेंट फेरा हुआ है अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, इस तरह वो लड़कियां खुली गाड़ियों में लेकर पूरे शहर में उन्होंने फिराया, और ये बात तो आपका दिल नहीं अभी तोड़ेगी इतना, जिससे यानी मैं कल जो डिप्रेस हुई जाके यहाँ से ये बात सुनी, मैंने कहा आपने मुझे सुनाई है मैं आपकी बात को मानती हूँ, और उन्होंने एक एक चीज़ और कह रही आप नेट से चेक करें कहानी, इधर भी लिखिए, एक मुस्लिम लड़की है उसमें, और इतनी पुलिस, इतनी फौज, इतने हेलीकॉप्टर्स क्यों हैं सिर्फ उस एक बच्ची के लिए, क्योंकि उसने पहले उस और एक ग्रुप है जिन्होंने ये सब किया है, और वो लड़की कहती है मुझे मुसलमानों से ख़तरा है वो मुझे शूट कर देंगे, ऊपर पूरी पुलिस उसके ऊपर रही है और वो चलता रहा। जो मैंने सुना है मैं आपको कमी बेशी ना करूँ तो बेहतर है, लेकिन जो मेरे गुनाहगार कानों ने सुना, और कह रही है खबरों में नेट पे सबसे ज़्यादा उस लड़की को हाईलाइट कर रहे हैं कि इसको मुसलमानों से ख़तरा है कि वो इसको शूट कर देंगे, तो हम इसकी हिफाजत के लिए ये इतना ग्रुप बना के चल रहे हैं, और उन्होंने हकूक मांगे हैं लोगों का, अपना जिस्म दिखा 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 के कि हमें इजाज़त दो कि हम गैर मुल्कों से लड़के लड़कों को असेंबल करके इधर शादियाँ करें, यानी यह प्लैक का बाहर जाए, यहाँ की गंदगी तो कर रहे हैं। मैंने कहा इतनी मुसीबत क्या कर ले, कहते कर तो वो पहले ही रहे हैं, आप सिर्फ ये हक मांग रहे हैं कि गवर्नमेंट लीगली अलाउ करे, मेरे तो कान खड़े हो गए, ये तो मुसलमानों के लिए कितना बड़ा फितना है। पहले ही आपने सुना होगा कि यहाँ रहकर एक एक लड़के की 4-4 शादियाँ करके 4 लड़कियों को तो इधर ले आए हैं लोग, कि चलो कोई मामू की बेटी है तो कोई चचा की, शादी करें इधर आके छोड़ देंगे। ये तो आपने भी किस्से सुने में, अब तो लड़कियां लड़कियों को बुलाएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं मजबूरी है, ये है फतन तुम। और मेरा दिल फट गया, मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है तूने मुझे बच्चों की आजमाइश में नहीं डाला, मैं नहीं मर सकती सुकून से अगर मेरे बच्चे इस सोसाइटी में पले बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया की प्लेग है, एक मुल्क नहीं है। आप जाके इसकी कमी बेशियाँ खुद पढ़ लीजिए जाके नेट से। आंखें नहीं खोल सकते इंसान जो गंदगी बाहर है और हम मज़े से बैठे हुए हैं, हमें आग नहीं लगती। मैं कहती हूँ नींद आती कैसे है, स्माइल आता कैसे, अंदर की खुशी अपनी जगह, लेकिन ये दुनिया अब वो नहीं रही कि मैं और आप मज़े करें। आज चारों तरफ आप देखिए जो हमले इस्लाम पे, और इस नुक्ते आगाज़ वगैरह को मुलामानी, बस मैं ये कर लूँ ना मैं लीगल हो जाऊँगी, बस ये कर लूँ ना तो मेरी जॉब अच्छी हो जाएगी, ये काम कर लिया तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, ये काम कर लिया तो नौकर मुझे कबूल कर लेगा, ये कोर्स कर लिया ना तो मुझे ये मिल जाएगा, ये कर लिया तो बगैर जॉब के छुट्टी मिल जाएगी और छुट्टी से पैसे कमाऊँगी। हत्ता जा अमरुल्लाह, मौत का फरिश्ता आएगा, सब ख़त्म नाम, और वह धोखेबाज खड़ा होगा और वहाँ जाके इंसान अपनी दुहाइयाँ देगा कि अल्लाह ये भी ले ले वो भी ले ले, जिस्म ले ले जान ले ले, फल यौम ला युखज़ु मिनकुम फिदया, बस आज के दिन तुमसे कोई फितिया कबूल ना किया जाएगा, और ना इन लोगों से जिन्होंने खुला खुला कुफर किया था। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, वही तुम्हारी खबर गिरी करने वाली है और ये बदतरीन अंजाम है। अल्लाह ने जहन्नुम ऐसे लोगों से भरनी है, गंदगी फैलाने वाले ट्रैश को 10 कागज़ों में बांध के फेंकते हैं। बाहर वालों को बताती हूँ कि नॉर्वे में गवर्नमेंट देती है कागज़ लिफाफे कि आप खाना इसमें डाल के फेंकें, प्लास्टिक इसमें डालें, अखबारें इसमें डालें, इतने मुहज्जब हैं हम लोग माशाल्लाह। ट्रैश डालने से पहले सोचना पड़ता है ये किस लिफाफे में डालें, और जिस्म की गंदगी और सेक्स की गंदगी को सड़कों पर रोला हुआ है। फिर हम कहते हैं क्या काम की ज़रूरत है, क्या नया कोर्स करना चाहिए, क्या मुझे रमज़ान के बाद कुछ पढ़ना है कि नहीं, क्या ये दौरे कुरान काफ़ी नहीं मेरे लिए। याद रखिए अपने बच्चों को बचा लें, अपनी नस्लों को बचा लें, और बचाने का लफ्ज़ सुनते हमारे जहन में आता है कूच कर जाओ, हिजरत कर दो, जाएं जहाँ जाते हैं। आपको मैं पाकिस्तान की खबरें सुनाऊँ इसी मौजू पे तो आपके कान सुर्ख हो जाएंगे कि हमारे मुल्कों में भी ये कुछ है, वहाँ के हॉस्टलों में जो लड़कियाँ लड़कियों के साथ उनके मामले हैं, कभी आप पढ़ के तो देखें। हम तो दुनिया को भी पूरा नहीं पढ़ते, दीन को कहाँ पूरा पढ़ पाएंगे। कहीं नहीं आपके मेरे बच्चे जाकर सिक्योर नहीं है, सिर्फ एक पनाह है अल्लाह की किताब, तकवा, ईमान, तन्हाई में अकेले में अल्लाह का एहसास कि अल्लाह है, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये दीवारें कायम करने के लिए कुरान को आम करना पड़ेगा। और तालीम वालों उम्मी, वो कहते हैं ना उम्मा की तालीम उम्मत की तालीम है, जब तक माँ के हाथ में कुरान नहीं आएगा बच्चा भी कुरान से नहीं जुड़ेगा। और अब इसके बाद इस आयत को अपने लिए लीजिए, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान लाने वालों के लिए अभी भी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से पिघले। और किस खराबी का इंतज़ार करते हो, किस चीज़ को देखना चाहते हो, अभी क्या और कोई आफत आए इस्लाम पे, क्या हो गया तुमको। वमा नज़ला मिनल हक़ी, और क्या उस नाजिल करदा हक के आगे नहीं झुकेंगे। ये क्या है हक, कुरान। अल्लाह कहते अभी भी तुमने इस कुरान के लिए ख़ुद को सरेंडर नहीं किया, तुम इसकी खिदमत नहीं करना चाहते, घर बैठकर तुम कौन सी अपने दीन की खिदमत कर रहे हो, तुमने नहीं सीखा तो बग़ैर सीखे कैसे जियोगे, सीख लिया और तुमने उसके अंदर अपने आप को नहीं खपाया कैसे बचोगे, कैसे बचोगे। देखिए एक बम गिरता है ना तो सबकी जान को ख़तरा होता है, चाहे कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, कोई मंदिर में पूज रहा हो किसी को, या कोई नाइट क्लब में खुराफात देख सुन रहा हो, सब पे वो बम गिरता है। जब गेहूं पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाता है। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना फिर अल्लाह उस वक्त ये नहीं देखते कि कौन डिजर्विंग है और कौन नॉन डिजर्विंग है, वो सब के साथ होता है। फिर अल्लाह ताला आपको मुझे एक बहुत सिंसियर एडवाइस देते हैं, वला यकूनु कल्लज़ीना, और वो इन लोगों की तरह ना हो जाए कौन जिनको पहले किताब दी गई। या आज मुझे आपको पहली दफ़ा किताब नहीं मिल रही, उतुल किताब, फिर क्या हुआ मिन कबलु, तुमसे पहले या इससे पहले, फिर क्या हुआ, इसको बड़ा बड़ा लिख लें या हाईलाइट कर लें, फ़ताला अलैहिम मलामत, फिर उन पर एक लंबी मुद्दत गुजर गई तो क्या हुआ, फ़क़सत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ یہ گڑبڑ ہوئی تھی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ عمل نہ شروع ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے، بہت سننے سے دل سخت ہوتا ہے۔ اس وقت بھی اگر سورت حدید کو سنتے وقت ہم کچھ اور کر رہے ہیں نا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا اپنی اپنی جگہوں پہ، تو یہ دل کی سختی ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں لوگ چلتے پھرتے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ذرا کوئی بڑا ایموشنل سین آتا ہے نا، وہیں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ اگر اس وقت بھی میں اور آپ قرآن کھول کر رو نہیں رہے نا، اس قرآن کو سامنے رکھ کر، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل سخت ہوں۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی خشیت سے نرم ہو جائے؟ کیوں اتنے دل سخت ہو گئے؟ سچ بتائیے، آج کے دور میں اسلام پہ جتنے حملے ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتنے تھے؟ اس سے زیادہ ہے، آج اجر بھی زیادہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں یہ آیتیں جب آ رہی تھیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر خرچ کریں گے، مگر تمہارے رتل، ایک چھوٹی سی جیسے ماشا تولا، تمہارے رتل کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آج اسلام کو ضرورت ہے، تم جو کر رہے ہو اس کا بہت اجر ہے۔ صحابہ کو نہیں پتہ تھا کہ کل اسلام کو اتنا عروج ملے گا اور 1000 سال تک دنیا میں مسلمان بے تاج بادشاہ بن کے کھیلیں گے۔ انہوں نے جو دیا حق کے لیے دیا، وہ آئے تو اسلام کے لیے آئے۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی ہیرا مٹی میں ملا ہوا ہمارے سامنے ہے، صرف اسے پانے کے لیے جھکنا پڑے گا۔ آج بھی یہ قرآن اتنی خوبصورت ہے، آج بھی یہ کتاب اتنی خوبصورت ہے جتنی اس دور میں تھی، لیکن اس کو آج مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ آج ان ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اس قرآن کو عام کرو، اس کتاب کے نور کو پھیلاؤ۔ یہ قرآن کا نور گھر گھر جائے گا تو پھر حق اور باطل کا فرق پتہ چلے گا، پھر ماں بہن بیٹی کی عزت کا پتہ چلے گا۔ اپنی بیٹی سے 8 بچے، اپنی بہن کے ساتھ شادی اور 4 بچے، نہیں سنا آپ نے؟ جا کے لکھ کے دیکھے گوگل میں، کوئی نہ کوئی خبر آپ کو مل جائے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں نو پرابلم، آپ کو ہوتا ہے کہ پلی کیا ہے؟ یعنی میں نے سبیل الجنہ میں شاید کہیں یہ کوٹیشن سنائی تھی، پڑھ کے اب زبانی بتا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا اسلام کتنا بیوقوف مذہب ہے، ایک لڑکی جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ پلی بھڑی، آپ کے ساتھ بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، جب وہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو تو آپ کسی اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں، اور آپ کسی کی اجنبی لڑکی لا کر اپنی بیوی بناتے ہیں۔ دا بیسٹ میچ آپ کی بہن ہے، جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا رپورٹ۔ کہتے ہیں شادی کرو بہن سے کرو، کیوں؟ کیونکہ تمہارا مزاج سمجھتی ہے، اس کی عادتیں تم سے ملتی ہیں۔ کیا چاہتا ہے انسان آج کا؟ یہ فتنے کل آئیں گے، حدیث میں قیامت کے قریب محرمات سے زنا ہوگا، ماں بہن بیٹی وہ نہیں محفوظ ہوں گی، اور ہوں بھی کیوں؟ جو باہر کے حال لیے دیکھیے، ماں جس طرح ننگی پھر رہی ہوتی ہے، ساتھ بچہ بھی ویسے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان کوئی نیک تو نہیں ہو گیا، آپ اور میں جتنے بھی نیک ہو جائیں، تو وقت کی ضرورت کو پہچانے ہیں۔ سختی آتی ہے، دیکھیے ایک تو سختی قرآن کے پڑھنے والوں میں آ جاتی ہے، جتنا قرآن پڑھتے ہیں نا اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اور آواز سخت، لہجے سخت، چہرے میں کھچاؤ، تڑپ، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک سختی آتی ہے جو قرآن سننے والے عمل نہ کریں تو وہ آتی ہے۔ آج واقعی وقت آ گیا، اب آپ بنو، وقت لگاؤ، دین کو دو۔ کیا چیزیں ہیں جو مجھے نہیں آنے دیتی ہیں اس کتاب کی طرف؟ آج اسلام کی طرف آنا قرآن کی طرف آنا، آج اسلام کی خدمت کتاب کی خدمت ہے، کیا رکاوٹیں ہیں میری؟ اللہ کہتے ہیں ابواب بنو، منیب بنو، حنیف بنو، فوکسڈ بنو۔ اپنی زندگی کے 2 سال اللہ کو دے دیں، اگر فل ٹائم نہیں دینے تو، اور فل ٹائم دینا ہے تو 1 سال دے دیں۔ اور ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، سب پتے کاٹیں پہلے مجبوریوں کے، ایک ڈسپلنڈ کورس کریں۔ میں پورے شعور سے، اپنے ایکسپیرینس سے اور آبزرویشن سے بتا سکتی ہوں، وہ 1 سال آپ کی پچھلی 20 سالہ تعلیم پہ بھاری ہوگا۔ آج ہم تو بندے بھی نہیں رہے، کہتے ہیں نا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے، نقوش بندگی، اور پھر سجدے میں گریں، لوہے جبیں تازہ کریں۔ آج تمہارا سجدوں میں گر گر کے امت کے لیے رونے اور دعائیں کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ ایک کال پہ اپنا گھر باغ مال دے کر چل پڑتے تھے، ہمارے دل سے سوال ہی نہیں ابھرتے، ختم ہی نہیں ہوتے، ہم صرف اس کی حکمتیں دیکھتے ہیں۔ और आपको ये जो अल्लाह ने बात की ना कि जो ऊतुल किताब थे उनके दिल सख्त हो गए, ये जो आज पढ़ रहे हैं हम इस वक्त, इस पे भी सुन लीजिए। आप देखिए कि यूरोप में मोस्टली चर्चेज अब बिक गए हैं। अब यूरोप में कानून बन गया, पता नहीं कहाँ कहाँ उसका इत्तलाक है, लेकिन मैंने यूके में तो यही सुना है, जब भी साथियों में बैठ के बात हुई, कि अब उन्होंने कानून पास किया है कि हम अब कोई चर्च नहीं बेचेंगे। क्यों? हर चर्च बिकता है और उसकी जगह मस्जिद बनती है। वो अब अपनी इसको एक अना का मसला समझते हैं कि ये तो हमारे चर्चेज मस्जिदें बन रहे हैं, क्यों चर्च बिके? कभी आपने सोचा? इमारतें बना ली, लोगों को इल्म ना दिया। हफ्ते में एक दिन जिस इमारत में जाके लोगों ने सॉन्ग्स गाने हैं, उस इमारत का खर्चा कौन चलाएगा? आज कहने को कहूँ मुसलमानों में भी यही हालात होते जा रहे हैं। इतनी बड़ी मस्जिद, देखिए जिस हॉल में आप बैठे हैं इससे 10-10 गुना बड़ी मस्जिदें दुनिया में मौजूद हैं। जहाँ काम हो रहा है अल्लाह और बरकत दे, लेकिन अमूमन आज हम मुसलमानों का ये हाल है, लोग नहीं हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं। लोग ग्रुप बनाते हैं, अभी चंद दिन पहले मीटिंग में पता चला कि एक ग्रुप है यहाँ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सबको यूनाइट करे। अब क्या हुआ? कहते ठप। वजह क्या? काम करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है। मस्जिदों की मैनेजमेंट वो लोग संभालते हैं जो 5 वक्त की नमाज छोड़िए, शायद 1-2 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटेजी है। मैं तो कहती हूँ मुझे कोई दरख्त के नीचे बिठा दे। लोग चाहिए, आप चाहिए मुझे, आपका माल खुद ही आ जाएगा इस्लाम को। कभी किसी से इस तरह खुल के नहीं कहा के माल दें, अपनों से 10 दफ़ा पूछ लें। बाहर वालों को कभी नहीं कहेंगे कि हमें नूरुल कुरान के लिए मनी दें, खुद ही लोगों को पता है जो देना चाहें अल्लाह उनका कबूल करे, मुबारक हो उनको। लोग चाहिए आज इस्लाम को, मेरा आपका माल नहीं चाहिए। हम रोज़ चेक लिखते हैं, यहाँ तो चेक नहीं लिखते। अमेरिका में एक आम औरत दिन में 6-7 चेक लिख देती है, जो ख़रीदा चेक दिया कार्ड चला, अगर उसमें एक चेक आपने डोनेशन का भी लिख दिया, कोई दिल पे चोट कोई नहीं पड़ती। आज आपका ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। हर दौर का एक फितना होता है, आज का फितना ये है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भी बाज़ दफ़ा इस्लाम को पीछे कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वकसीरो मिनहुम फासिकून। तो फिक्र कर लो, जिहाद करना है, हिलजुल का नाम है, जमूत तोड़ना है। ये जो स्टेगनेंट वाटर है ना, खड़ा पानी स्मेल आती है उसमें से, आज मुसलमान खूबसूरत बहती हुई नदियाँ धारे नहीं रहे। और जिनको दीन का शौक भी है माशाल्लाह, इस बिलियंस की नेशन में आज भी करोड़ों लोग दीनदार हैं, पर वो कौन सा दीन है? चिल्ला कशी, वजीफे, बरकतें, ये करें। कल मुझे इतनी खुशी हुई, एक स्कूल की प्रिंसिपल का मैसेज था मेरे साथ और उनसे बात हुई, कहती हमारे स्कूल की रस्म चलती आ रही है कि जब नया एकेडमिक ईयर आता है तो कुरान खानी कराते हैं हम कुछ दिन तक, बच्चों को भी और टीचरों को भी। मैंने अब सुना है तो अब मुझे तो लग रहा है कि ये कोई स्टाइल नहीं है कुरान का, तो आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि हम क्या करें इस साल अपने स्कूल में इन बच्चों के एकेडमिक ईयर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई, मैंने कहा कि जो काम आप कर सकती हैं ना वो मैं भी नहीं कर सकती, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास नई जनरेशन है। फिर मैंने उनको कुछ आइडियाज़ दिए कि आप ये करें वो करें। जब तक तालीमी इदारों तक इस कुरान को नहीं पहुँचाएंगे और इस कुरान की तालीम को लेंगे, जहाँ से नस्लें पलती हैं वहाँ तो वो सीख के आ जाते हैं जीजिस गॉड, जीजिस सन ऑफ गॉड और ट्विंकल ट्विंकल ये वो, तो आप उनको बड़े होकर नमाज भी कहेंगे तो वो कहेंगे क्या होती है नमाज। ज़रूरत है बच्चों के लिए काम करें, उनके ऊपर माल लगाएं और उसके साथ अपने आप को लेकर चलें। जिहाद आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। आप देखिए कि जिसने इस पहाड़ की चोटी को सर करना होता है वो नीचे से चलना शुरू तो करे, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, फिर एक वक्त आएगा चढ़ जाएगा और नीचे खड़ा देखता रहे, हाय चोटी बड़ी दूर, चोटी बड़ी दूर। नहीं हो सकता है आप बीच में बस आधी सीढ़ियाँ पार करें, आपका हिस्सा ख़त्म हो जाए, आप दुनिया से जाएँ, अगला हिस्सा कोई और कर लेगा। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज हम मुसलमानों को अपने करने का काम समझ आ जाए, वरना फिर दुनिया की हकीकत खोल दिए। खूब जान लो, कान खोलो, स्काफ ढीले करो, कानों का डाट ख़त्म करो। क्या? कि अल्लाह ज़िंदगी को उसकी मौत के बाद, अल्लाह ज़मीन को उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी बख्शता है। खुशखबरी है, इस वक्त उम्मत सोई भी है लेकिन बंजर ज़मीन फिर कुछ अरसे के बाद ज़रखेज़ हो जाती है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। और यकीन करें जो मुसलमानों में पैशन है ना किसी काम को करने का, जब आ जाता है तो ये तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कौम है दुनिया की, शायद बेस्ट वर्कर करार पाते हैं पाकिस्तानी लोग। चले पाकिस्तान का नाम तो मोहब्बत में लिया। जिस दिन इस सोई हुई उम्मत को यकीन आ गया ना कि मेरी ज़रूरत है इस्लाम को, फिर मैंने दिन रात लोगों को काम करते भी देखा है। चाय पी पी के जाग जाग के दो दो तीन दिन दिन में एक एक प्रोजेक्ट को पूरा करते देखें। ये जो आपके पास ऐप आया अल्लाह की रहमत से, कभी मैं आपको इसके स्टेप्स सुनाऊँ ना कि जो पिछले 3-4 महीने से चल रहे थे। कई ऐसे ब्रदर्स होंगे जो रातों को नहीं सोए, और कई ऐसी सिस्टर्स हैं जिन्होंने बच्चों को थपक थपक के गोदों में रख के इसको आप रेडी किए। करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, फिर ये ज़िंदा हो जाएगी उम्मत इंशाल्लाह। हमने निशानियां तो तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अक्ल से काम लो। करो क्या, इन्नल मुसद्दकीन वल मुसद्दिकात, मर्दों और औरतों में से जो लोग सदकात देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज़े हसन दिया है, इनको यकीनन कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। डोंट लूज होप, अल्लाह आपको कम नहीं देगा और इनके लिए बेहतरीन अजर है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए, वही अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। सिद्दीकियत का मुकाम है उसके लिए जो अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपा रहा है, और इनके लिए इनका अजर और इनका नूर है। अजर क्या है आखरत में, नूर क्या है दुनिया में। ऐसे लोग होते हैं तो तभी दुनिया में दीन फैलता है। और यकीन करें, जो वॉलंटियर्स दीन को फ़ायदा दे सकते हैं ना, वो पेड लोग नहीं देते। वजह पैशन, माल तो कोई इतना बड़ा इंसेंटिव नहीं है। आपको नींद आई, आपको आप कहते मारो गोली पैसों को, मैं सो रहा हूँ, काट लेना मेरे पैसे, मैं नहीं आ रहा रात को। एक वक्त आता है बंदा थक जाता है। तारीफ़ के लिए करेंगे, एक दिन तारीफ़ अच्छी लगती है, वल्लाह ही बाद में तो तारीफ़ बुरी लगती है। खौफ आने लगता है तारीफ़ सुन सुन के, वहशत होती है, घबराहट होती है ऐसे लोगों से जो आपकी तारीफ़ करें। ये भी कोई इतना बड़ा मोटिव नहीं है। सिर्फ एक चीज़, ये वाली बात जिसको पढ़ रहे हैं कि अल्लाह मेरे लिए ये सोच रहा है, अल्लाह मुझे देगा ये सब कुछ। इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने कुफ़्र किया और हमारी आयात को छुटलाया है, वो दोज़खी हैं। जो जिस दर्जे पे कर ले ये काम, उस दर्जे की दोज़ख का झटका तो लग ही जाएगा उसको। देखिए, काफिर को तो अल्लाह दोज़ख में डाले, कुछ बात समझ आती है, क्या मुसलमान भी दोज़ख में जाए? डज़ इट सूट्स, ये सूट करता है? जैसे मुसलमान काबा में जाते हैं ना, इट्स नॉर्मल है, लेकिन काफिर तो नहीं कभी गया। बुरा इंसान तो नाइट क्लब में जाता है, कभी कोई मुहज्जब इंसान गया? तो जन्नत में जाना सूट करता है मुसलमानों को? क्या ये मुसलमान के स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि वो एक झटका ही से चले दोजख का एक चक्कर? तो कटवा के लाओ फरिश्तों इसको, तो दुआ करे अल्लाह दूर से भी दोजख ना दिखाए।